सफा नंबर 294, मुक्कल अगर मेरा नाम सुनकर आया है तो वो कहीं भाग नहीं जाएगा। चुनच्चा इन दोनों का कलाम सुनने के बाद इकबाल ने अपना ताज़ा कलाम सुनाया और फिर मजलस बर्खास्त हुई। ज़ाहरा इकबाल मकबूल आमदनी के किसी ऐसे जरिए की तलाश में थे जो कशाकश रोजगार से इन्हीं कम अज कम इतनी मोहलत दे के वो अपनी कुव्वत फिक्र का रुख इस आलम की सिमत मोड़ने के काबिल हो सके जिसका तल्लक तख्लीक से था। इकबाल की रूह की गहराइयों में यह एहसास तड़प रहा था कि इनका असल मकद्दर शेर के जरिए एक नया पैगाम आलम इस्लाम तक पहुंचाना है, लेकिन बदकिस्मती से बरसगीर में तसनीफ व तालीफ का शुगल बजाय खुद मकबूल आमदनी का जरिया ना था बल्कि ऐसे मकसद की तहसील के लिए किसी न किसी मालदार सरपरस्त की जरूरत थी। इकबाल इस गधे पेट की खातर जो लाओचारा का विरत करते हुए इन दम भर के लिए भी मोहलत ना देता था अपनी तकदीर मुअत्तल करने पर रजामंद ना थे। इसी बिना पर वह अपने मिजाज के मुआफक किसी मुलाजमत के अख्तियार करने को खारज इस बायस करार ना देते थे। इस मरहले पर इनकी तवज्जो हैदराबाद दक्कन की तरफ मबजूल हुई। इकबाल कभी हैदराबाद ना गए थे, गो इनकी गजलें और नज़में वहाँ के मुख्तलिफ रसालों या जरीदों में छपती रहती थी और हैदराबाद की बाद इल्म दोस्त शख्सियात मसलन सर अकबर हैदरी, महाराजा किशन प्रसाद वगैरह से इनका गैबी तारफ या गलबन खतो कताबत थी। नीज इकबाल के दोस्त गुलाम कादर ग्रामी भी शायर खास इंतजाम की हैसियत से वहाँ मुकीम थे। हैदराबाद में इस अहले सुखन की कदर अफजाई के चर्चे इकबाल के कानों तक पहुंचते रहते थे और इन्हें ये तवक्को हो गई थी कि दिल्ली और लखनऊ की बर्बादी के बाद हैदराबाद ही एक ऐसी मुस्लिम रियासत है जहां हो सकता है इन्हीं वो मोहलत मैसर आ सके जिसकी इन्हीं जस्तजू थी। चुनाचा वो कॉलेज से 10 दिन की रुख्सत लेकर 18 मार्च 1910 की रात को हैदराबाद रवाना हो गए। अतिया फयाजी तहरीर करती है कि इकबाल ने अपने किसी खत में हैदराबाद जाने की ख्वाहिश का इजहार किया और इनसे तौरफी चिट्ठी के तालब हुए। सो अतिया फयाजी ने अपने अजीज सर अकबर हैदरी के नाम जो इन दिनों निज़ाम के मुतमद फैनांस थे तौरफी खत अरसाल कर दिया, मगर ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती। अतिया फयाजी की किताब में इकबाल का कोई ऐसा खत शामिल नहीं जिसमें इनसे किसी तौरफी चिट्ठी का मुतालबा किया गया हो। अलावा इसके अतिया फयाजी के नाम खत मुहर्रा 30 मार्च 1910 में इकबाल लाहौर से अपने दौरा हैदराबाद की तफसील बयान करते हुए इन्हीं तहरीर करते हैं, अगर मैं हैदराबाद में मजीद कुछ अर्सा क्याम कर सकता तो मुझे यकीन है कि हज हाइनस निज़ाम मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते। मैं वहाँ के सबसे बड़े आदमियों से मिला और कईयों ने मुझे अपने यहाँ मदऊ भी किया। मेरा हैदराबाद जाना कुछ मान ही रखता था जिसके बारे में मुलाकात पर आपसे अर्ज करूँगा। सिर्फ सर अकबर व लेडी हैदरी से मिलना मेरी सेहत का मकसद ना था, शायद आप ही नहीं जानती हो। हैदराबाद में मुलाकात से बेशतर मुझे इनसे वाकफियत की मुसरत हासिल ना थी। इनके यहाँ मेरा क्याम नहायत पुर लुत्फ रहा। अगर इकबाल अतिया फयाजी की वसासत से सर अकबर हैदरी और इनकी अहलिया से मिले होते तो यह तहरीर ना करते कि शायद आप ही नहीं जानती हो, बल्कि मुतज़क्करा खत में अतिया फयाजी की तौरवी चिट्ठी का हवाला देकर इनका शुक्रिया अदा करते। इकबाल की किसी तहरीर से पता नहीं चलता कि इनके हैदराबाद जाने का मकसद क्या था। इनके पेशे नज़र कोई मखसूस मुलाजमत ना थी, ये क्यास करना भी दुरुस्त नहीं कि इनका दौरा किसी खास मुलाजमत की गरज से था। बहरहाल गालिब अमकान यह है कि अगर इन्हीं दरबार दक्कन में बारियाबी हासिल हो जाती तो वह निज़ाम को तसनीफ व तलीफ के सिलसिले में अपने मुस्तकबिल के अजायम की हमीयत से रोशनास कराना चाहते थे और अगर इन अजायम की हमीयत को समझते हुए निज़ाम इन्हें किसी मुनासब मनसब की पेशकश करते तो वो गलबन इसे कबूल कर लेते, लेकिन ऐसी नौबत ही ना आई। सफा नंबर 296, हैदराबाद में जब जमाना आखिरी ताजदार आसफी के वालद नवाब मीर महबूब अली खान की हुकूमत का था। नवाब मीर महबूब अली खान दाग के शगिर्द और इकबाल के उस्ताद भाई थे। दाग का इंतकाल हो चुका था। नज़र हैदराबादी नवाब मीर महबूब अली खान के मुतल्लक तहरीर करते हैं। वो अजीबोगरीब मिजाज आदमी थे, खड़े हैं तो घंटों खड़े हैं, जाग रहे हैं तो पहरों जाग रहे हैं, इसमें दिन और रात की कोई कैद नहीं थी। दक्कन के पुराने लोगों में दिल्ली वली मशहूर थे, शिकार के लिए निकल गए तो हफ्तों इसी शुगल में गुजार दिए। लख लुट और दरिया दिल थे, जिसने इनकी एक झलक देख ली या दरबार में बारियाब हो गया इसने मुंह मांगी मुराद पाई और दुनिया से बेनियाज कर दिया गया। इन गैर मामूली मशागल के बावजूद ये भी इनकी करामत थी कि अमूर सल्तनत को वो हसन व खूबी अंजाम देते थे, लेकिन इनकी आजमाइश बड़ी सब्र आजमा होती थी। चनाचा खुद दाग पहली दफा हैदराबाद गए तो तवील मुद्दत तक इंतजार करने के बावजूद दरबार निजाम में बार याब ना हो सके और वतन वापस हो गए। फिर इसी साल बुलवाया गया, लेकिन उस्तादी का शरफ 3.5 साल के क्याम के बाद बख्शा गया। फिर जिस तरह नवाजे गए वो अतर मन शम्स है, लेकिन इकबाल को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो चंदे इंतजार करते। हैदराबाद में इकबाल ने सर अकबर हैदरी के यहाँ क्याम किया, मुमकिन है वो हैदरी खुत कताबत के जरिए इकबाल से मुतारफ हुए हों। ये भी हो सकता है कि इकबाल से इनका गायबाना तारफ ग्रामी के जरिए हुआ हो, क्योंकि हैदराबाद जाने से चंद रोज कबल इकबाल ने अपने खत मुहर्रा 11 मार्च 1910 बनाम ग्रामी में तहरीर किया। सफा नंबर 297 खत लिखे हुए कई दिन गुजर गए, हैदरी साहब के मुतल्लिक इस्तफार किया, जवाब नदारद। दो खतों के जवाब आपके जिम्मे हैं, आप किस आलम गफलत में क्याम पजीर या तशरीफ फरमा हैं। सर अकबर हैदरी और इनके अहलिया इल्म अदब का नहायत उमदा ज़ौक रखते थे, उन्होंने ना सिर्फ इकबाल की खातर तवाज़ो की बल्कि हैदराबाद की मुक्तदर हस्तियों से इन्हीं मुतारफ करवाया। हैदराबाद में क्याम के दौरान इकबाल ने नज़म तबा तबाही से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। नज़म इन अयाम में निज़ाम कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर की हैसियत से मामूर थे। सर अकबर हैदरी ने इन्हें बुलवा भेजा और इकबाल से तारफ़ करवाया। कुछ देर बातचीत के बाद इकबाल ने इनसे अपना कलाम सुनाने की दरख्वास्त की। नज़म ने अपने एक नातिया कसीदे की तशबीब के अशार सुनाए, पर्दा जुल्मत से निकला रूए सलमाए सहर, नाका गर्दों से खेंची लैला शब ने महार। अशार सुनकर इकबाल ने नज़म को इनकी कादर अकादमी पर बे इंतहा दाद दी और बाद में इन्होंने नज़म ई की ज़मीन में मदिया कसीदा शुक्रिया तहरीक किया, जो महाराजा किशन प्रसाद से मंसूब है। इकबाल हैदराबाद में ग्रामी की सोबतों से मुस्तफीद के अलावा इसके वहाँ के तमाम अहले कमाल से मिले। हाफज जलील हसन जलील मानकपुरी ने जो दाग के बाद उस्ताद निज़ाम मुकर्रर हुए थे इकबाल के एजाज में एक इशाइया दिया, जिसमें हैदराबाद के मुतअद्दद शायरों और अदीबों को मदऊ किया गया। इस तकरीब में ज़हीर देहलवी भी नकाबत और बुढ़ापे के बावजूद शामिल हुए। इकबाल का अपना बयान है, मैं गुज़श्ता साल हैदराबाद गया तो ये ज़रूरी बात थी कि मैं वहाँ के अहल कमाल से मिलूँ, चुनाचा हाफज जलील हसन साहब जलील मानकपुरी के यहाँ मेरी दावत हुई। वहीं मौलाना ज़हीर भी तशरीफ़ रखते थे। मौलाना ने मुझसे शेर पढ़ने की फरमाइश की, मगर सुनाने से ज़्यादा मुझे खुद ये शौक़ था कि मौलाना की ज़बान से कोई शेर सुनूँ। चुनाचा मैंने अर्ज़ किया, हजरत जब तक मैं पहले आपकी ज़बान से शेर ना सुन लूँ अपना शेर हरगिज़ ना सुनाऊँगा। मौलाना ने इस दरख्वास्त को मंजूर फरमाया और ये शेर सुनाया, वो झूठा इश्क है जिसमें फ़गां हो, वो कच्ची आग है जिसमें धुआं हो। एक आध शेर और भी सुनाया मगर वो याद नहीं रहा। मौलाना ज़हीर इस वक्त बहुत ज़ईफ़ व नातवां थे और ऊंचा सुनते थे। इकबाल ने हैदराबाद में एक नज़म गोरस्तान शाही के अनवान से गोलकंडा के कुतुब शाही बादशाहों के मकबरों से मुतासर होकर लिखी। ये नज़म इनके हैदराबाद से लाहौर वापस आने पर मखज़न में इकबाल के इस नोट के साथ शाया हुई, हैदराबाद दक्कन के मुख्तसर क़याम के दिनों में मेरे अनायत फरमा मिस्टर नज़र अली बी ए मद महकमा फिनांस मुझे एक दिन इन शानदार मगर हसरतनाक गुमदों की ज्यारत के लिए ले गए जिनमें सलातीन कुतुब शाही सो रहे थे। रात की खामोशी अबर अलूद आसमान और बादलों से छन कर आती हुई चांदनी ने इस पूर्व हसरत मंजर के साथ मिलकर मेरे दिल पर ऐसा असर किया जो कभी फरामोश ना होगा। ज़हर की इन नज़म इन ही की बेशुमार तासरात का इजहार है। इसको मैंने अपने सफ़र हैदराबाद की यादगार में मिस्टर हैदरी और इनकी लाइक बेगम साहबा मिसिज हैदरी के नाम से मंसूब करता हूँ, जिन्होंने मेरी मेहमान नवाजी और मेरे क्याम हैदराबाद को दिलचस्प तरीन बनाने में कोई दकिया फरोगस्त नहीं किया। हैदराबाद में इकबाल महाराजा किशन प्रसाद से भी मिले, जो इन दिनों रियासत के सदर अल महाम थे। महाराजा किशन प्रसाद राजा टू डरमल की औलाद से थे। इनका असल वतन लाहौर था, जहाँ से इनका खानदान पहले दिल्ली और फिर हैदराबाद पहुँचा। वो ज़ात के खश्तरी थे, लेकिन संस्कृत के अलावा अरबी फारसी और उर्दू में महारत के सबब सूफियाना ख्यालात रखते थे। शेर गोई और शेर फहमी का इनको ख़ास मलका था। दाग और आसफ के शिगिर्द रह चुके थे, अपना तखद्दस शाद था। फनून सपागरी के साथ मिल नजूम खताती मसबरी और मौसीकी पर भी अबूर हासिल था। एक बहुत बड़ी जागीर जिसकी आमदनी 1,25,000 रुपए सालाना थी इनको वर्षे में मिली थी। इनका माहौल तो अमीराना था, लेकिन आदत फकीराना थी। 4 बेगमें मुसलमान थी, जिनमें से एक की मोहब्बत में खतना भी करा लिया था। 3 रानियां हिंदू थीं। मुसलमान बेगमात की औलाद मुसलमान थीं और इनके रिश्ते मुसलमानों में किए गए, इसी तरह हिंदू रानियों की औलाद हिंदुओं में ब्याही गई। राजा साहब की तलीम तरबियत इस्लामी तरीके पर हुई थी, लिहाजा कुरान मजीद की कई सूरतें और अहदाइस इन्हीं जुबानी याद थी। मंदिरों में कफशा लगाते और मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे। इन्होंने अपना मुहादाना मसलक अपने अशार में यूं बयान किया, मैं हूँ हिंदू, मैं हूँ मुसलमान, हर मजहब है मेरा ईमान, शाद का मजहब शाद ही जाने, आज़ादी आज़ाद ही जाने। इनके शेर और नसर के कई मजमूए मुख्तलिफ नामों से शाया हुआ और एक नात को तो ये शर्फ हासिल होगा कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के पीछे कुतुब खाना शेखुल इस्लाम की एक दीवार पर आवाज़ा की गई। मई 1940 में इंतकाल किया। हैदराबाद के इस हिंदू जागीरदार की फकीराना आदत मुवस्सी आजज़ो इनकसार नवाजश करीमाना और वसत अखलाक ने इकबाल का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। सफ़ा नंबर 300। दोनों के दरमियान बहुत गहरे तलुकात कायम हुए। इकबाल ने महाराजा किशन प्रसाद की तरीफ में एक मदिया कसीदा शुक्रिया के नवान से तहरीर किया, जो मखजन में इकबाल के इस नोट के साथ छाया हुआ। गुज़िश्ता मार्च में मुझे हैदराबाद दक्कन जाने का इतफाक़ हुआ और वहाँ आस्ताना वजारत पर हाजिर होने और आली जनाब हज एक्सीलेंसी महाराजा किशन प्रसाद बहादुर जी CIE यमीन अलसल्तनत पेश का जोर वजीर आजम दौलत आसफिया मुतखल्लस बादशाह की खिदमत व बरकत में बारियाब होने का फख्र भी हासिल हुआ। हज़ एक्सीलेंसी की नवाजश करीमाना और वसत अखलाक ने जो नक्श मेरे दिल पर छोड़ा वो मेरी लोह दिल से कभी नहीं मिटेगा। मजीद अल्ताफ ये के जनाब मददू ने मेरी रवानगी हैदराबाद से पहले एक नहायत तकल्लुफ अमेज खत लिखा और अपने कलाम शरीफ से भी शरीन काम फरमाया। ज़ैल के अशआर इस अनायत बेगैत के शुक्रिया में दिलों से जुबान पर बेख्तियार आ गए। इकबाल 23 मार्च 1910 को हैदराबाद से वापस लाहौर रवाना हुए। रस्ते में 2 दिन औरंगाबाद में क्याम किया और औरंगाबाद औरंगजेब आलमगीर के मकबरे की जियारत की। मज़ार औरंगजेब आलमगीर की जियारत के वक्त इकबाल के साथ बड़े भाई शेख अता मोहम्मद भी थे, लेकिन वह तज़ीमन मज़ार पर अवेज़ा कनात के अंदर दाखिल ना हुए, क्योंकि बकौल इनकी दाढ़ी गैर मशरू थी। इकबाल 28 मार्च 1910 को लाहौर पहुँचे। मालूम होता है कि अतिया फयाजी को अंदेशा था कि इकबाल ने रियासत हैदराबाद या निज़ाम की ज़ाहरी शौर शौकत से मुतासर होकर उतर का रुख किया है। नीज चूँकि वह माली मुश्किल में मुबतला थे और बकौल अतिया फयाजी जिस इंसान के रस्ते में इस किस्म की मुश्किल आए हों वो हर इस तिनके का सहारा लेता है जो इसकी राह में आ जाए। वो हैदराबाद के होकर अपनी तवज्जो कहीं आला मकासद की तहसील की बजाय मामूली अमूर की तरफ मबजूल ना कर दें, इसलिए उन्होंने इकबाल को तंजन तहरीर किया कि वो निज़ाम की कदर शनासी की खातर अपनी शायराना सहलियतों को तबाह ना करें। मगर अतिया फयाजी इकबाल के सफर हैदराबाद के मकसद को ना समझ सकें, चुनचा इकबाल ने इन्हें चिढ़ कर जवाब दिया, मैंने कब कहा था कि निज़ाम की कदर शनासी मेरे लिए बाइस इज्जत है। आप जानती हैं कि मैं ऐसी बातों की मतलब परवाह नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि बहसीयत शायद पहचाना जाऊँ, अगरचा बदकिस्मती से लोग मुझे इस हैसियत से जानते हैं। अभी अगले रोज़ ही मुझे नीपल्स से एक अतालवी बैरवंस का खत वसूल हुआ है, जिसने मुझसे मेरी चंद नज़में बिमा अंग्रेजी तर्जमा तलब की थी, लेकिन शायरी के लिए मेरे दिल में कोई वलवला वजूद नहीं और इसकी जिम्मेदार भी आप हैं। मैं किसी देसी वाली रियासत की कदरदानी की क्या परवाह करता हूँ, जबकि गैर ममालक के बाज़ौक अशखास की कदरदानी मुझे मैसर है। इकबाल लाहौर वापस पहुँच कर हसब ममूल अपनी तवद्दो में मसरूफ़ हो गए। गुज़िश्ता 2 सालों में उन्होंने अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना जलसों में कोई नज़म ना सुनाई थी, अलबत्ता अंग्रेज़ी में लेक्चर दिए थे, लेकिन 1910 के साल में उन्होंने अंजुमन के सालाना इजलास में किसी भी किस्म की शिरकत से ग्रेज़ किया। वजह यह थी कि अंजुमन के अरबाब बस्त व कशाद में धड़ेबंदी के सबब इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मुतनाज़ा फ़िया अमूर में दस्तूर और अमल भी शामिल था। अखबार वतन के मदीर मौलवी इंशाल्लाह खान ने अंजुमन के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखे थे। अखबार कारकुनान अंजुमन के रवैये से बहुत मायूस थे। बहरहाल फराकीन में सुलह कराने की खातर 29 अप्रैल 1910 को नवाब फतेह अली खान कज़लबाश की सदारत में 6 अफराद पर मुश्तमिल एक सालसी मजलस कायम की गई, जिसमें इकबाल भी शामिल थे। सालसी मजलस का फैसला सब ने कबूल किया और अंजुमन के खिलाफ मुकदमात वापस लिए गए। सफ़ा नंबर 302। इकबाल का ये दौर बेहद मसरूफियत का दौर था, इसलिए 1908 से लेकर 1910 तक जो मरूफ नज़में मखजन में शाया हुई वो 6 से ज़ायद ना थी। प्याम इश्क अक्टूबर 1908, अब्दुल कादर के नाम दिसंबर 1908, बलाद इस्लामिया अप्रैल 1909, शुक्रिया जून 1910, गोरस्तान शाही जून 1910 और फलसफा गम जुलाई 1910 इसी अहद में छपी। गो प्याम इश्क और अब्दुल कादर के नाम क्याम यूरोप के बाद आखिरी एग्जाम में तहरीर की गई थी। इस दौर में इकबाल ने चंद अंग्रेजी मकालात भी तहरीर किए जिनका जायजा मुनासब मुकाम पर लिया जाएगा। अलावा अजीम उन्होंने अपने अफकार एक ब्याज में नोट्स की सूरत में जमा करने के शुरू किए। इकबाल की ये मुश्किल ये थी कि मौलमी और वकालत के दो पेशे ब्याक वक्त अख्तियार करने से वो कोई काम भी यकसोई से ना कर सकते थे। शायरी की तरफ तवज्जो देने का वक्त तो निकलता ही ना था। 1910 में इन्हीं ये पेशकश भी हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज में मुस्तकिल तौर पर शोबा फलसफा की सदारत कबूल कर लें, लेकिन ये इसी सूरत मुमकिन था जबकि आप वकालत के पेशे को खैरबाद कह देते। अब आपसे मशवरा किया गया, मिर्ज़ा जलालुद्दीन तहरीर करते हैं। हम सब ने यही राय दी कि सरकारी मुलाजमत में अव्वल तो कुव्वत अमल के सलब होने का एहतमाल है, दूसरा महकमा तलीम में वसत के इम्कानात बहुत महदूद हैं। चुनांचा अगर सरकारी मुलाजमत पर ही निगाह हो तो वकालत ही क्यों ना रखी जाए जिसमें तरक्की के जुमला मदारज में जज का ओहदा भी है। इसी पर उन्होंने कॉलेज से तअल्लुक़ात मुनक़ता कर लिए और वकालत पर इत्तफ़ाक़ा की। गवर्नमेंट कॉलेज की मुलाजमत से इकबाल 31 दिसंबर 1910 को सुबकदोश हो गए। सुबकदोशी के मतलब वो काफ़ी अर्सा पहले ही सोच रहे थे। चुनांचा अतिया फयाजी के नाम अपने एक खत मुहर्रा 17 जुलाई 1909 में तहरीर करते हैं, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं मुख्तलिफ अमूर पर माली नुक्ता नज़र से गौर करूँ, और ये नुक्ता नज़र वो है जिससे चंद बरस बेशतर मुझे दिल्ली कराहत थी। मैंने तय कर लिया है कि खुदाई अमदाद पर भरोसा करते हुए अपने कानूनी पेशे को जारी रखूंगा। सबकदोशी के मौके पर कॉलेज की तरफ से इन्हीं एक अलविदाई पार्टी दी गई और इन्होंने तलबा को रॉबर्ट ब्राउनिंग की शायरी के मौजू पर अपना आखिरी लेक्चर दिया। बहरहाल मुलाजमत से मुस्ताफी होने के बाद इकबाल का गवर्नमेंट कॉलेज से ना किसी हैसियत से तल्लक कायम रहा। वो अक्सर तालिब इल्मों के मुशायरों की सदारत के लिए बुलवाए जाते और इनमें मुसन्नफ के फ़राइज अंजाम देते। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियों से भी इनका तल्लक कायम रहा। उन्होंने 1900 से लेकर 1937 तक मिडल इंटरस एफ ए बी ए एम ए बी ओ एल एम ओ एल एफ ई एल 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 बी वगैरह हत्ता के ई एस सी और सिविल सर्विस के इम्तहान के पर्चे मुरतब किए। इसके अलावा पंजाब अलीगढ़ अलाहाबाद नागपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटियों के मतमहन रहे। बैतुल उलूम हैदराबाद दक्कन के लिए भी तारीख इस्लाम के पर्चे मुरतब करते रहे। वो अमूमन तारीख फलसफा अंग्रेजी उर्दू फारसी अरबी और कानून के पर्चे बनाते थे। बाद अवकात जुबानी इम्तहान के लिए लाहौर से बाहर यानी अलीगढ़ अलाहाबाद नागपुर वगैरह भी जाते। मतमहन या मतमहन आला की हैसियत से कभी सिफारिश कबूल ना करते, और अगर कोई अजीज से अजीज तर दोस्त भी सिफारिश करने की जसारत करता तो नाराज हो जाते। इकबाल के गोशवारे आमदनी की पड़ताल से जाहिर होता है कि मतमहन की हैसियत से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के लिए पर्चे तरतीब देना इनकी आमदनी का एक जरिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से अजा है कि इन्हें 2 मार्च 1910 को यूनिवर्सिटी का फेलो नामजद किया गया। तब इकबाल का तलक अभी गवर्नमेंट कॉलेज से कायम था। उन्होंने लाला राम प्रसाद प्रोफेसर तारीख गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के इश्तराक से निसाबी किताब तारीख हिंद मुरतब की जो 1913 में शाया हुई। रफ्ता रफ्ता इन्हें मेंबर ओरिएंटल व आर्ट्स फैकल्टी मेंबर सेनेट और मेंबर सिंडिकेट बना दिया गया। कन्वेयर बोर्ड ऑफ स्टडी की हैसियत से वो फलसफा अरबी और फारसी के शोबों से मुतल्लक बोर्ड के इजलासों में भी शरीक होते थे। बोर्ड का काम इन मजामीन के निसाब तैयार करना, माहरीन की खिदमात हासिल करना, तलबा के मसाइल और इनका हल तलाश करना और अपनी सिफारिशात यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को पेश करना था। 1919 में इकबाल और ओरिएंटल फैकल्टी के डैन मुंतखब किए गए। 1923 से 1939 में यूनिवर्सिटी की एक एकेडमिक कौंसिल के रुकन चुने गए। इसी साल वो प्रोफेसरशिप कमेटी के रुकन भी मुकर्रर हुए। इस कमेटी का तल्लक यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चरारों और प्रोफेसरों की तकर्री से था। यूनिवर्सिटी के काम की ज्यादती और अपनी अदीम अल फर्जी के पेश नज़र उन्होंने इसी साल एकेडमिक कौंसिल से इस्तीफ़ा देना चाहा, लेकिन सर जान मीना रोड वाइस चांसलर की दरख्वास्त पर वापस ले लिया। 1924 में इकबाल यूनिवर्सिटी की इस कमेटी के मेंबर नामजद किए गए जिसका तल्लक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मशावती कमेटियों और इंतखाबात वगैरह की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश करना था। 1925 में इकबाल की زیر نگرانی حکیم احمد شجاع نے ان کے نظریات و رجحانات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سلسلہ ادبیہ کے نام سے چھٹی، ساتویں اور آٹھویں جماعتوں کے لیے اردو کورس کی تین کتابیں مرتب کی، جنہیں ٹیکسٹ بک کمیٹی نے اپنے اجلاس بتدریج 12 جنوری 1925 کو نصاب میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ اقبال پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے رکن بھی رہے۔ میٹرک کے طلبہ کے لیے انہوں نے ایک فارسی کتاب آئینہ حجم بھی مرتب کی، جسے میسرز عطر چاند کپور رانا انارکلی بازار لاہور نے 1927 میں شائع کیا۔ صفحہ نمبر 305، پنجاب یونیورسٹی سے اقبال کا عملی تعلق 1923 تک رہا۔ اس کے بعد دیگر قسم کی مصروفیات یا علالت کے باعث انہوں نے یونیورسٹی کے امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ 23 نومبر 1929 میں علی گڑھ انٹرمیڈیٹ کالج یونین کی اعزازی لائف ممبر شپ بھی انہیں دی گئی۔ تقریب میں شرکت کے لیے اقبال علی گڑھ گئے۔ 23 دسمبر 1934 کو انہیں علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف سے ڈی لیٹ کی ڈگری پیش کی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی نے بھی اقبال کی علمی، ادبی، تدریسی اور تعلیمی خدمات کے اعتراف کے طور پر 4 دسمبر 1933 کو انہیں ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی نے اپنی جوبلی کے موقع پر اقبال کو ڈی لیٹ کی ڈگری سے نوازا، اور اسی سال عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے بھی انہیں ڈی لیٹ کی ڈگری وصول ہوئی۔ بہرحال کالج کی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد اقبال کی تمام تر توجہ پریکٹس کی طرف مبذول ہو گئی۔ کام کے سلسلہ میں اب انہیں کبھی کبھار لاہور سے باہر بھی جانا پڑتا۔ جب وکالت کچھ چلنے لگی تو اقبال نے ایک گگ بگی خرید لی، گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے ایک پوربیا سائز رکھا۔ اسی گگ پر ہاتھوں میں گھوڑے کی باگ تھا میں وہ کچہری جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات کچہری سے فارغ ہو کر گگ کو واپس بھیج دیتے اور مرزا جلال الدین کی کار میں بیٹھ کر ان کے دفتر چلے جاتے۔ مرزا جلال الدین کا ملازم ایک خاص طرز سے مسدس حالی ستار پر سنایا کرتا تھا، اسی لیے اقبال اسے اکثر مسدس سنا کرتے۔ اب اقبال کے بے تکلف احباب میں مرزا جلال الدین، نواب سر ذوالفقار علی خان، سر جوگندر سنگھ کے علاوہ سردار امراؤ سنگھ شیرگل، مشہور آرٹسٹ امرتا شیرگل کے والد بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ شام کی چائے نواب سر ذوالفقار علی خان کے ہاں پیتے اور زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتے۔ کچہری میں تعطیل ہوتی ہے تو دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھاتے۔ مرزا جلال الدین کے ہاں بعض اوقات رات کو محفل رقص و سرور بھی برپا ہوتا ہوا کرتی تھی۔ اقبال کو راگ رنگ کا شوق تھا، اس لیے ان مجالس میں شامل ہوتے۔ اگر کوئی اپنی وجہات کی بنا پر ان سے شعر سننا چاہتا تو وہ نہ سناتے۔ عام طور پر شعر سنانے کے معاملے میں وہ بڑے محتاط واقع ہوئے تھے، چند دوستوں کے سوا کسی کو اپنا کلام نہ سناتے۔ البتہ اگر کبھی سر عبد القادر لائلپور سے آ کر محفل میں شریک ہوتے یا گرامی موجود ہوتے تو اقبال اپنے شعر سناتے اور لطافت سخن اور رفت تخیل کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے۔ ان صحبتوں میں ان کی ظرافت پر ورطبیعت اپنے زوروں پر ہوتی اور زبان سے ایسے ایسے لطیف فکرے چست ہو جاتے یا ایسی دلفریب پھبتیاں نکلتی کہ حباب پھڑک اٹھتے، مگر ان کے مذاق میں بیہودہ باتوں کو کوئی دخل نہ تھا۔ بسا اوقات اقبال پر ایک معنی خیز سکوت سا چھا جاتا اور یوں نظر آتا کہ کویا وہ کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے ہیں، پھر اچانک چونک پڑتے جیسے نیند سے بیدار ہوئے ہوں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوتی راج کماری صوفیہ جندا بمبا اقبال سے ملنے کی بڑی خواہش مند تھی۔ وہ جیل روڈ کے کوٹھی میں رہتی تھی۔ 1912 کی ایک شام سر جوگندر سنگھ اقبال اور مرزا جلال الدین کو ان کے ہاں لے گئے۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں چائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں راج کماری کی فرمائش پر اقبال نے انہیں چند اردو اشعار سنائے۔ بمبا اردو سمجھ لیتی تھی لیکن شعر سمجھنے کی حیلیت نہ رکھتی تھی، اس لیے جوگندر سنگھ نے شعر کا انگریزی ترجمہ کر کے ان کی تشریح کی۔ بمبا کو معلوم ہو گیا کہ اقبال حکے کا شکین ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ڈرائیور پیر جی سے حکا بھروا کے پہلے ہی سے برامدے کے ایک کونے میں رکھوا دیا تھا۔ جب اقبال بیٹھ گئے تو وہ خود اٹھ کر گئی اور حکا لا کر اقبال کے آگے رکھ دیا۔ اقبال نے مرزا جلال الدین کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ لو رنجیت سنگھ کی پوتی نے اپنے ہاتھ سے ہمیں حکا پلایا ہے۔ بمبا نے اقبال کو ایک آدھ بار پھر اپنے ہاتھ چائے پر بلایا کیونکہ ان کی ایک آسٹرین سہیلی فرولین گوٹسمین اقبال سے ملنے کی آرزو مند تھی۔ چند دنوں بعد ایک شام بمبا نے فرولین گوٹسمین اور اپنی ایک اور یورپین سہیلی کے لیے شالامار باغ میں چائے کا انتظام کیا جس میں اقبال بھی مدعو تھے۔ فرولین گوٹسمین نے باغ میں سے ایک پھول توڑ کر اقبال کی خدمت میں پیش کیا، جس سے متاثر ہو کر وہ نظم لکھی گئی جو بانگے درا میں پھول کا تحفہ عطا ہونے پر کے عنوان سے شامل ہے۔ دوسری سہیلی نے ایک خوبصورت بلی پال رکھی تھی جو اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اقبال نے اس پر بھی نظم کی گود میں بلی دیکھ کر کہی जो बांगे दरा में मौजूद है। इस जमाने में पंजाब में सियासत बराए नाम थी, फिर भी लाहौर में दो सियासी धड़े मौजूद थे, एक की क्यादत सर मोहम्मद शफी के हाथ में और दूसरे की सर फजल हुसैन के हाथ में थी। दिसंबर 1907 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास कराची में हुआ, जिसमें सर मोहम्मद शफी और सर फजल हुसैन दोनों अपने अपने हमायतियों के साथ शरीक हुए। इस इजलास के नतीजे में पंजाब में सूबाई मुस्लिम लीग कायम हो गई। बकौल अजीम हुसैन मियां शाह दीन इसके सदर बने और सर मोहम्मद शफी सेक्रेटरी जनरल, लेकिन सर फजल हुसैन ने अपने हमायतियों यानी पीर ताजुद्दीन, मलक बरकत अली इकबाल, खलीफा शुजाउद्दीन, सर शहाबुद्दीन गुलाम बीग निरंग वगैरह समेत अमली तौर पर इस नई सूबाई मुस्लिम लीग में हिस्सा ना लिया। राकम की राय में इस मसले पर इकबाल का शुमार सर फजल हुसैन के हामियों में करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इकबाल जुलाई 1908 तक यूरोप से वापस ना आए थे। मिर्जा जलालुद्दीन बयान करते हैं कि सूबाई मुस्लिम लीग के क्याम पर मियाँ शाहुद्दीन सदर, सर मोहम्मद शफी सेक्रेटरी जनरल, मौलवी महबूब आलम ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिर्जा जलालुद्दीन असिस्टेंट सेक्रेटरी और डॉक्टर मोहम्मद शरीफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे, जबकि सर फजल हुसैन इसके मुखालफत थे। इसलिए उन्होंने अपनी लीग अलग बनाई, जिसमें वो खुद अब्दुल्ला वकील, पीर ताजुद्दीन और मियाँ सामोद्दीन शामिल थे, और मियाँ शाहुद्दीन के जज बन जाने पर इनकी जगह सर मोहम्मद शफी सूबाई मुस्लिम लीग के सदर बने। इकबाल के मियाँ शाहुद्दीन, सर मोहम्मद शफी और सर फजल हुसैन सबसे एक से दोस्ताना मरासम थे। इसके अलावा भी उन्होंने पंजाब की अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू ही नहीं किया था, इसलिए उन्होंने सियासी पार्टीबाजी से अपने आप को जहां तक मुमकिन हो सका अलग थलग रखा। अजीम हुसैन बयान करते हैं कि जब नई दस्तूरी असलाहत के पेश नज़र सूबे में सियासी ज़िंदगी के कुछ असार नमोदार हुए और सर फजल हुसैन ने पंजाब में यूनिनिस्ट पार्टी बनाई तो इकबाल इसमें शामिल हो गए। यह दुरुस्त है कि इकबाल ने पंजाब की अमली सियासत में 1926 से दिलचस्पी लेना शुरू की थी। हो सकता है वो सर फजल हुसैन के स्टार पर यूनिनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए हों, लेकिन बकौल डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी, इकबाल 1927 से 1930 तक पंजाब कानून साज कौंसिल के रुकन रहे और इन 3 सालों में उन्होंने यूनिनिस्ट पार्टी के अंदर रहकर इस जमात के तरीक़ेकार को बगौर देखा। शहरी और देहाती चपलकश कानून साज कौंसिल में इसी पार्टी ने पैदा की थी और फिर इसी चपलकश ने सूबे की पूरी आबादी को अपनी लपेट में ले लिया। इकबाल से ये तमाम बातें पोशीदा ना रह सकी थी, इसलिए बाद में सियासत के मैदान में सर फजल हुसैन और इकबाल में शदीद इख्तलाफात रुनुमा हो गए और सर अब्दुल कादर के साथ दोस्ती में भी वो गर्मजोशी ना रही। सफा नंबर 309। 1911 तक बरसगीर के बेशतर मुस्लिम कायदीन सर सैयद अहमद खान के बताए हुए रस्ते पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत से वफादारी का दम भरते थे, मगर 1911 और 1914 के दरमियाने अरसे में बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि इस अंदाज फिक्र में तब्दीली आ गई। मुस्लिम कायदीन को अंग्रेजी हुकूमत के हाथों पहला धचका 1911 में तकसीम बंगाल की तनसीख पर लगा। मुस्लिम कायदीन तनसीख बंगाल के हामी थे और अंग्रेजी हुकूमत ने भी 1905 से लेकर 1911 तक तनसीख तकसीम बंगाल के हिंदू मुतालबे को नज़रअंदाज करते हुए ऐलान किया था कि तकसीम बंगाल का फैसला अटल है, लेकिन जब हिंदुओं ने अपने मैदानों में तशद्दुद का तरीका अख्तियार किया तो अंग्रेजी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। तकसीम बंगाल की तनसीख का ऐलान 1911 में कैसर हिंद जाट पंजम ने बजाते खुद दिल्ली पहुँच कर किया और इसी साल से कलकत्ते के बजाय दिल्ली को बरतानवी हिंद का दारालकूमत बना दिया गया। मशरकी बंगाल के मुसलमानों की तलीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने वादा किया कि इलाके में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, मगर हिंदुओं ने इसकी भी मुखालफत की। तकसीम बंगाल की तनसीख ने ख्वाजा सलीम उल्ला खान नवाब ऑफ ढाका की सियासी जिंदगी का खात्मा कर दिया और कुछ ही अरसे बाद फौत हो गए, क्योंकि मुस्लिम कायदीन को पहली मरतबा एहसास हुआ था कि अपने सियासी मुतालबात तस्लीम कराने की खातर सिर्फ वफादारी का दम भरना या आइनी जराए इख्तियार करना ही काफ़ी नहीं है। मौलाना शिबली की निगाह में तकसीम बंगाल की तनसीख मुसलमानों के चेहरे पर एक ऐसा थप्पड़ मारने के मुतरादफ थी जिसमें इनका मुंह का रुख फेर कर रख दिया था। इसी साल से आलम इस्लाम की सूरतयाल भी मजीद मखदूश होना शुरू हुई। ईरान को बरतानिया और रूस ने अपने अपने हल्का असर के अतबार से 1907 से आपस में बांट रखा था। 1911 में रूस और जर्मनी के दरमियान एक माहिदा हुआ जिसके तहत जर्मनी ने ईरान पर रूस का हक तस्लीम कर लिया। 1912 में रूस ने मशहद पर बमबारी की और बाद में रूस और बरतानिया की फौजों ने ईरान पर कब्जा करके ना सिर्फ वहाँ आइनी तहरीक को कुचल दिया बाकी ईरानियों की आज़ादी भी सलब कर ली। सफा नंबर 310। दूसरी तरफ तुर्की में यंग पार्टी या अंजमन इतिहाद तरक्की का लाया हुआ इंकलाब भी तरक्की तुर्की के बीमार मर्द के लिए शफा का बायस ना बन सका। अंजुमन कभी तो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद इस्लाम की बजाय उस्मानियत को करार देती थी और कभी तुरानी इतिहाद का नस्ली नारा बुलंद करती थी। इसी दौरान में ऑस्ट्रिया ने ऐलान किया कि मशरकी यूरोप के तुर्की इलाके बोसनिया और हर्ज़ेगोविना इसकी सल्तनत का जुज है। फिर बल्गारिया ने तुर्की से आज़ादी का ऐलान कर दिया। 28 सितंबर 1911 को इटली ने दीगर यूरोपी ताकतों से अदम मुदाखलत की यकीन दहानी हासिल करके त्रावलस और सीरे नाइका लीबिया पर कब्जा कर लिया। बरतानिया ने मिस्र को तुर्की की हमायत में उठने से बाज रखा, मगर तुर्कों और वहां के मुकामी मुसलमानों ने बेशुमार जाने कुर्बान करके अतालवी फौज को साहिली इलाके की तरफ धकेल दिया। इसी गुस्मान की जंग में फातिमा बिन्त अब्दुल्ला एक 13 साल बच्ची जख्मियों को पानी पिलाती हुई शहीद हुई। अभी त्रावलस की जंग जारी थी कि अक्टूबर 1912 में 4 बलकानी रियासतों यूनान सर्बिया मॉन्टीनेग्रो और बल्गारिया ने तुर्की पर हमला कर दिया और यूं जंगे बलकान शुरू हो गई, जिसके सबब तुर्क मशरकी यूरोप के तमाम इलाकों से महरूम हो गए। इसी साल फ्रांस ने मराको पर अपना तसल्लुत मुस्तहकम किया। बरसगीर के मुस्लिम कायदीन गुज़िश्ता कई बरसों से अंग्रेजी हुक्म से इस्तदा करते चले आ रहे थे कि इनके वफादारी के बावजूद मुखालफ पॉलिसी इख्तियार करने से एहतजाज किया जाए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी एक न सुनी। नतीजन मुसलमान हिंद में तुर्की की हमायत में बड़ा जोशो खरोश पैदा हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का उर्दू अखबार हमदर्द और अंग्रेजी हफ्त रोजा कामरेड, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का अहलाल और मौलाना जफर अली खान का जिम्मेदार इसी जोशो खरोश की इक्कासी करते थे। इन्हीं मुस्लिम कायदीन ने 1912 में चंदा जमा करके एक हलाले अहमर मिशन डॉक्टर इंसारी की क्यादत में तुर्की भेजा। 1911 में इकबाल भी अपने गर्दन वार से मुतासर हुए बगैर ना रह सके और अपनी जाती महरूमियों मुसलमान हिंद की मायूसियों और दुनिया इस्लाम पर पे दर पे नाजर होती हुई मुसीबतों के रद्द अमल के तौर पर इनका जज्ब अंदरों शिकवा जैसी मौरकतुल अरा नज़म की सूरत में फूट निकला। नज़म शिकवा रिवाज हॉस्टल इस्लामिया कॉलेज के सहन में मुनक़दा अंजमन हमायत इस्लाम के अप्रैल 1911 वाले सालाना इजलास में पढ़ी गई। अंजमन के जलसों में पढ़ी जाने वाली इकबाल की नज़में अमूमन छुपवा कर लाई जाती थी, मगर इस नज़म के मुतल्लक पर्दादारी से काम लिया गया। मिर्ज़ा जलालुद्दीन तहरीर करते हैं, डॉक्टर साहब अपने खास दोस्तों की सोहबत में अमूमन ताज़ा अशार बुला किसी फरमाइश के खुद व खुद सुनाया दिया करते थे, मगर जिस जमाने में वो शिकवा लिख रहे थे उन्होंने हद दर्जा खामोशी से काम लिया। जिस शाम अंजमन हमायत इस्लाम के सालाना जलसे में फकीर सैयद इफ्तखारुद्दीन महरूम की सदारत में आप ये नज़म सुनाने वाले थे, इसी शाम आप अपने वालिद साहब के हमरा मेरे हाम मद्दू थे। हम खाना ख़त्म कर रहे थे कि अंजमन के सेक्रेटरी साहब ममा चंद अराकीन के हामतों में तशरीफ लाए और परेशानी के आलम में कहा कि नज़म का वक़्त शुरू होने वाला है और साइमीन शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब फिलफौर उठ खड़े हुए और हम समझ गए कि इस मरतबा कोई मारकातुल आला नज़म होगी जिसके लिए इस कदर पर्दादारी से काम लिया गया है। डॉक्टर साहब पंडाल में दाखिल हुए तो हमेशा की तरह अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों से इनका इस्तकबाल किया गया। इसके बाद तालियों के शोर में डॉक्टर साहब नज़म सुनाने के लिए उठे। सफ़र नंबर 312। इकबाल ने शलवार और छोटा कोट पहन रखा था, सर पर तुर्की टोपी थी। सबसे पहले उन्होंने एक कता तख्तुल लफज पढ़ा जिसके दो मिसरे ये थे, ढब मुझ कौम फरोशी का नहीं याद कोई और पंजाब में मिलता नहीं उस्ताद कोई। जब नज़म पढ़ने लगे तो मुख्तलिफ अतराफ से सदाएं बुलंद होने लगी कि तरन्नम से पढ़िए, क्योंकि अंजमन के जलसों में इकबाल अमूमन अपनी नज़में तरन्नम से पढ़ा करते थे। सो शिकवा तरन्नम से पढ़ी गई। सर अब्दुल कादर जो जलसे में मौजूद थे रकम तराज हैं। इकबाल ने अपनी मशहूर नज़म शिकवा अपने खास अंदाज में पढ़ी। बहुत लोगों को याद होगा जब कैफे गम का समा जलसे पर छाया हुआ था, इसके बहुत से मदा फूलों से झोलियां भरकर लाए थे और जब वो पढ़ रहे थे तो इन पर फूल बरसाए जा रहे थे। इस वक्त की एक और बात खास तौर पर काबिले दीद थी कि इकबाल का माँ उमर बाप इस नज़म के सुनने वालों में मौजूद था। बाप की आंखों में बेटे की कामयाबी देखकर खुशी के आंसू थे, मगर लबों पर तासीर कलाम से वही अलामात गम थी जो बेटे के चेहरे पर थी। दरहकीकत ये खसूसियत बेटे ने बाप से वरसे में पाई थी। इकबाल के वालद एक सूफी मनश बुजुर्ग थे, मगर इनका रंग तसूफ ऐसा ना था कि इनको जिंदगी के रोज़मर्रा फ़राइज़ से बेपरवाह कर दे। सारी उम्र अपनी 10 उंगलियों की मेहनत से रोजी कमाई। दिल बाई यारो दोस्त बकार पर इनका अमल था, दिल खुदा की तरफ और हाथ काम पर लगे रहते थे। इकबाल जब नज़म पढ़ चुके तो इनके मदा ख्वाजा अब्दुल समद कुकड़ो रईस बारामोला आ गए, आगे बढ़े और जोश मसरत में अपना कीमती दोशाला इकबाल के शानों पर डाल दिया।